हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज 3 अगस्त 2010 को आप सबका संध्या जागृति में स्वागत है। हरे कृष्णा। आप लोगों ने बहुत ही प्रेम से कीर्तन किया इसलिए बहुत घनघोर वर्षा हो रही है। हरे कृष्णा। तो 24 अगस्त को इस साल श्री बलराम जयंती का उत्सव मनाया जाएगा। श्रावण पूर्णिमा का दिन है तो इसी महीने में श्रावण महीने के पूर्णिमा के दिवस श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। श्री बलराम जी कृष्ण भगवान के सबसे पहले अवतार हैं। लीला अवतार कहते हैं उनको। केवल भगवान के लीलाओं का विस्तार करने के लिए उनका आविर्भाव हुआ था। और बलराम जी और कृष्ण भगवान में कोई अंतर नहीं है। जैसे राधा रानी और कृष्ण भगवान में कोई अंतर नहीं है। सभी ऐश्वर्य सभी गुण सभी शक्तियाँ सभी प्रकार के जितने भी ऐश्वर्य हैं वो सभी राधा रानी श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी में उपलब्ध हैं। केवल बलराम जी में और राधा रानी कृष्ण भगवान में अंतर इतना ही है कि केवल कृष्ण भगवान घने बादल के रंग के हैं और बलराम जी गोरे रंग के हैं। जो वसंत ऋतु में बादल आता है बहुत सफ़ेद रहता है वैसे बलराम जी का रंग है और जो वर्षा के समय घनघोर बादल होते हैं वैसा रंग कृष्ण भगवान का है। ये छोड़ने के पश्चात बाकी सब भगवान और कृष्ण में बलराम में कोई भिन्नता नहीं है। और साथ साथ और एक फर्क है कि बलराम जी भगवान होते हुए भी कृष्ण भगवान के प्रति सेवक भाव के रूप में होते हैं। उनका भाव सेवक है। कृष्ण भगवान परम पुरुषोत्तम भोक्ता के रूप में और बलराम जी हमेशा स्वयं भगवान होते हुए भी श्री कृष्ण भगवान की सेवा भाव में रहते हैं। उनका वस्त्र उनका बिछाना उनका अलंकार उनका मोरपंख उनकी बांसुरी उनका पीताम्बर उनके शस्त्र अस्त्र हर वस्तु जो है भगवान की वो बलराम जी का विस्तार है। यहाँ तक कि श्री वृंदावन धाम जिसमें भगवान कृष्ण लीला करते हैं वो भी बलराम जी का विस्तार है। बलराम जी भगवान के सखा भी हैं। बलराम जी भगवान के दास भी हैं। बलराम जी भगवान के बड़े भाई के रूप में वात्सल्य भाव में भी हुए और साथ साथ बलराम जी स्वयं अनंग मंजरी गोपी बन जाते हैं और गोपी भाव में भी उनकी सेवा करते हैं। यह अनंग मंजरी जो है वो राधा रानी की छोटी बहन है। वृषभानु और कीर्ति माता की कन्या है। इस तरह से पांचों रस में वो भगवान की सेवा करते हैं। ऐसे कोई भगवान का सेवक नहीं है जो हर रस में उनकी सेवा कर सकता है। हर एक जीव भगवान का शुद्ध भक्त है और अपने परिपूर्ण अवस्था में वो किसी एक ही रस में भगवान की सेवा करता है। लेकिन बलराम जी ऐसे व्यक्तिमत्व है जो एक ही साथ पांचों रसों में भगवान की सेवा करता है। इसलिए बलराम जी का स्थान जो बड़ा दिव्य है और बलराम जी का कृष्ण भगवान के पहले आना यह भी एक बहुत समर्पक वस्तु है। यशोदा देवकी माता का जो गर्भ है उसको हमारे हृदय की तरह माना गया है। उस हृदय में 6 विकार होते हैं काम क्रोध लोभ मद मत्सर। काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर ये हमारे 6 विकार हैं जो हमारे 6 शत्रु हैं। षड रिपु कहते हैं उनको। वो हमारे हृदय में रहते हैं और अपने हृदय को दूषित अपवित्र करते रहते हैं। वो 6 जो शत्रु हैं हमारे वो देवकी के 6 गर्भ के रूप में आए। वो हिरण्यकश्यपु के नाती थे उनको शाप दिया गया तो वही काम यानी कि शरीर को भोगने की इच्छा क्रोध जब भोग पूर्ण नहीं होते हैं तो क्रोध उत्पन्न होता है। इस दुनिया के वस्तुओं को प्राप्त करने का लोभ हम बड़े आदमी हैं अधिकार से संपृक्त है, इससे होने वाला मद जो है ना, इंटॉक्सिकेशन बोलते हैं उसको, आदमी पावर से पागल हो जाता है और क्या क्या कर बढ़ता है जब पावर उसके हाथ में आती है। हाँ, फिर दूसरे से मत्सर करता है वो, जब हमारे पास कुछ है और उसके पास हमसे ज़्यादा है तो मत्सर उत्पन्न होता है, हमारे पास कुछ नहीं है जो उसके पास है उससे मत्सर उत्पन्न होता है। और मोह उत्पन्न होता है, क्या मतलब कि मैं शरीर हूँ आत्मा नहीं, इसको मोह कहते हैं, ये मैं हूँ और ये मेरा है, अहंता और ममता, इसको मोह कहते हैं। तो ये छह जो शत्रु हमारे हैं वो छह गर्भ के रूप में देवकी के प्रकट हुए और कंस के द्वारा उनका वध किया गया, और इनके नष्ट होने के बाद सातवें गर्भ के रूप में बलराम जी का आविर्भाव हुआ। इसका मतलब जब तक ये छह शत्रु हमारे हृदय में हैं तब तक हमारे हृदय की शुद्धि नहीं हो सकती है, इसके बाद ही बलराम जी का आविर्भाव हुआ। मतलब बलराम जी गुरु तत्व हैं, वो सभी गुरुओं के आदि गुरु हैं। हमारे गुरु जी जो हैं वो उनके प्रतिनिधि हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे गुरु जी सेवा करते हैं, और सारा आध्यात्मिक बल जो है वो श्री बलराम जी के रूप में प्राप्त होता है। बलराम जी बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, बिना बलराम की कृपा से कृष्ण भगवान नहीं प्राप्त हो सकते। तो बलराम जी छह शत्रुओं को हृदय में नष्ट होने के बाद में स्वयं प्रकट होते हैं और हृदय को पवित्र कर देते हैं, और श्री कृष्ण भगवान के आविर्भाव होने के लिए हमारे हृदय को योग्य बना देते हैं। अभी आप लोग बोलेंगे कि आपने तो पहले कहा था कि भगवान हमारे हृदय में तो ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो दोबारा प्रकट होने की जरूरत क्या है? नहीं, हमारे हृदय में प्रकट ऑलरेडी है, वो परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं, लेकिन वो माया का पर्दा जो है उसके सामने पड़ा हुआ है, उनका दर्शन नहीं हो रहा है, उनकी अनुभूति नहीं हो रही है, वो हृदय में है ये पता नहीं चल रहा है। तो बलराम जी वो पर्दे को हटा देते हैं। जब पर्दा हटेगा तो जो पहले से विराजमान है उनका दर्शन होगा। तो ये बलराम जी की कृपा है, उनकी कृपा के बिना, जैसे हम कहते हैं गुरु की कृपा के बिना भगवान नहीं मिल सकते हैं, इसलिए गुरु जी को भगवान से भी बढ़कर माना गया है, क्योंकि भगवान को मिलाने वाले वही हैं। इसलिए अगर दोनों सामने खड़े हो जाए तो पहले हम गुरु को वंदन करते हैं, क्योंकि हमको भगवान को उन्हें पता नहीं था, गुरु के द्वारा पता चला, गुरु ने उनका दर्शन कराया। इसलिए बलराम जी का स्थान महत्वपूर्ण है बहुत हमारे जीवन में, और साथ साथ में बलराम जी आध्यात्मिक बल का उगम है, मतलब स्पिरिचुअल पावर जो होती है ना, कैसे हम समझें उसको, हम जो आध्यात्मिक जीवन में जप करने के लिए, हाँ, कथा में जगह रहने के लिए जो निश्चय होता है ना, वो बलराम जी देते हैं। बलराम जी की तरफ से वो निश्चय शक्ति जो है, इच्छा शक्ति जो है, और तपस्या करने की शक्ति, कुछ नियम पालन करने की, उपवास करने की, या कोई और व्रत करने की शक्ति जो है, इसको आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं। हाँ भाई, हम लोग यहाँ से विराट ट्रेन से बैठ के भागते हैं ट्रेन से, वो भी शक्ति जरूरत होती है, लेकिन वो आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, वो शरीर को पालने के लिए किया हुआ मेहनत है, वो उसे क्या माया से द्वारा शक्ति प्राप्त होती है। चलो भोगने के लिए और चाहिए पैसा, और मेहनत करो और पैसा आएगा फिर और भोग लेंगे, इसको भौतिक शक्ति कहते हैं। लेकिन भगवान का नाम लेने के लिए, सुबह जल्दी उठने के लिए, भगवान का शास्त्र समझने के लिए, भगवान का शास्त्र का अर्थ को समझने के लिए, जो भगवान ने बाइबल में, गीता में, कुरान में दिया गया है, उनको क्या कहना क्या है उनको, वो समझ में आने के लिए जो शक्ति आवश्यक है, वो शक्ति बलराम जी के द्वारा प्राप्त होती है। तो इसलिए बलराम जी आध्यात्मिक बल के उगम है, इसलिए आध्यात्मिक बल, जैसे कि हम लोग गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, एक तो है शरीर का काम होता है 12 घंटे चलना है, लेकिन एक होता है निश्चय, मन ही पहले हार गया कि नहीं नहीं हमसे तो नहीं होगा, हम तो 2 घंटे के पहले चल नहीं सकते हैं। ये जो मन का निश्चय जो है वो बलराम जी की ओर से आता है, इसलिए हम लोग गोवर्धन परिक्रमा करने के पहले बलराम जी की याचना करते हैं कि आप केवल शरीर के बल के स्रोत नहीं हो, आप आध्यात्मिक बल के उगम हो, इसलिए हमें आध्यात्मिक बल पहले दीजिए, निश्चय शक्ति पहले दीजिए। जब कोई जन्माष्टमी का व्रत होता है तो हम जन्माष्टमी के पहले दिन बलराम जी को प्रार्थना करते हैं कि जन्माष्टमी जी का जो उपवास है वो सफल हो जाए। केवल अन्न जल ग्रहण न करना ये व्रत नहीं होता है, वो अन्न जल ग्रहण न करते हुए उनकी याद बनी रहे, इसके लिए जो शक्ति आवश्यक है वो बलराम जी देते हैं। इस प्रकार से हर आध्यात्मिक व्रत में जो शक्ति की आवश्यकता होती है वो बलराम जी की ओर से आती है। बलराम जी अपना बल जो है उनका वो प्रकट करने में उनको बड़ा आनंद आता है। और श्री कृष्ण भगवान के साथ साथ मिलजुल कर उनकी सेवा करते करते उनके लिए सब कुछ देते हुए, यानी कि धाम भी दे रहे हैं, वस्त्र भी दे रहे हैं, अस्त्र भी दे रहे हैं, शस्त्र भी दे रहे हैं, साथ भी दे रहे हैं, हर प्रकार का जो संग है वो देते हुए भगवान कृष्ण की लीला में वो सहायता करते हैं। भगवान की हर प्रकार की लीला में उनका समावेश, शांत रस में वो सब कुछ बने हुए वस्तुएं, दास्य रस में भी साथ में सेवा कर रहे हैं, जब भगवान गौचारण करते हैं, गोपाओं के साथ खेलते हैं, हाँ नदी में कूदते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में गेंद खेलते हैं, ये सभी जमुना किनारे घूमते हैं, सभी लीलाओं में उनका साथ देते हैं, उनकी देखभाल भी करते हैं, कोई नदी किनारे जाएगा तो गिरे ना जाए, कहीं मट्टी ना खा जाए, कभी चोरी ना करे, कुछ ना करे, देखभाल भी करते रहते हैं उनकी। अब जब रास रचाते हैं भगवान कृष्ण तो गोपी बनकर उनको सहायता करते हैं अनंग मंजरी के रूप में, ऐसा अनोखा स्थान है उनका। तो उनकी दो प्रकार की लीलाएं हैं, एक है ब्रज के अंदर की लीलाएं और एक ब्रज की बाहर की लीलाएं, मतलब वृंदावन धाम के अंदर जितने समय बिताया उन्होंने 10 साल, और फिर सब दोनों मथुरा चले गए, मथुरा के वहां पर लीला किया, फिर द्वारका चले गए वहां पर लीला हुआ, फिर हस्तिनापुर गए वहां पर लीला हुआ। तो एक विशेष भाग उनका जो है उत्कट लीला कहते हैं, वो उत्कट लीला जो है वृंदावन धाम में है। तो बलराम जी की कई कहानियां हैं, बलराम जी ने बहुत राक्षसों का वध किया है, इसलिए हमको समझना चाहिए कि बलराम जी हमारे जीवन में अविभाज्य अंग रखते हैं, हमारे भक्ति का जो अविभाज्य अंग है वो बलराम जी है। एक राक्षस था उसका नाम था द्विविध गोरिल्ला, वानर था वो बहुत बड़ा, हाँ वो रामलीला में था, बहुत भयंकर शक्तिशाली, बहुत बड़ा पराक्रमी वानर था वो। उसने राम भगवान के रावण के खिलाफ जो युद्ध हुआ था उसमें बहुत पराक्रम दिखाया था, बहुत ज्यादा पराक्रम, लेकिन उसके अंदर एक समस्या थी, वो राम भगवान को वो बड़ा मानता था लेकिन लक्ष्मण भगवान को नहीं मानता था, लक्ष्मण जी को नहीं मानता था, उनका मतभेद था उनसे, ना उनका वो आदर करता था। इस एक बात के लिए, ये मैं क्यों बताना चाहता हूं आपको, क्योंकि जैसे राम कृष्ण के अलग नहीं है तो लक्ष्मण जी बलराम जी हैं, बलराम जी का अवतार लक्ष्मण जी है, जैसे राम लक्ष्मण है वैसे कृष्ण बलराम है, और वैसे ही चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु हैं, वही व्यक्ति है वो। तो बलराम जी के स्वयं के अवतार में आने के पहले उन्होंने लक्ष्मण जी का अवतार लिया था, रामानुज यानी कि राम का अनुज भाई के रूप में। तो ये कथा मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको समझ में आना चाहिए कि लक्ष्मण जी का स्थान कितना महत्वपूर्ण है। तो राम जी की इतनी बढ़िया सेवा करने के बाद भी, क्योंकि लक्ष्मण का उन्होंने अपराध किया था मन ही मन में, वो वानर जो था वो कृष्ण लीला तक जिया, राम लीला समाप्त हुई, त्रेता युग समाप्त हुआ, द्वापर युग शुरू हुआ, द्वापर युग के अंत तक वो जीवित रहा, लेकिन लक्ष्मण के अपराध की वजह से उसको कुसंगति प्राप्त हुई, वो बाणासुर भौमासुर ऐसे भयंकर राक्षस के संग में आया और असुर बन गया। पहले भक्त था भगवान का, भगवान की बड़ी सेवा भी की थी, भगवान की लीलाओं में उन्होंने सहायता किया था, रावण को मारने की लीला में सहायता किया था उसने, कितना बड़ा भक्त है वो। लेकिन फिर भी लक्ष्मण का अनादर करने की वजह से उसको राक्षसों का संग प्राप्त हुआ, उसकी मति भ्रष्ट हो गई, उसके मन से भक्ति नष्ट हो गई और भगवान के शत्रु के रूप में उसके मन में विचार उत्पन्न हुए। और वही जब बलराम जी, हाँ यहाँ पर वर्णन आता है, बलराम जी जब चले गए मथुरा में चले गए, फिर द्वारका चले गए, तो गोपियाँ बहुत व्याकुल हो रही थी, ब्रजवासी बड़े व्याकुल हो रहे थे। तो बीच में एक बार बलराम जी वृंदावन में आए, 2 महीना तक रहे, चैत्र और वैशाख महीने में जब वसंत ऋतु आता है, बहुत सुंदर सुंदर फल खिलते हैं, सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, हरियाली छा जाती है, सब जगह पंछी गाते हैं, सुंदर मधुर वातावरण उत्पन्न होता है, नदी किनारे बाष्प उत्पन्न होता है, बाष्पों से फूलों की खुशबू मिक्स हो जाती है, फिर हवा उसको अच्छी तरह से बहाती है, सुगंधित हवा भगवान कृष्ण और बलराम के शरीर को आनंद देती है, ठंडक पैदा करती है। सुंदर वातावरण में चैत्र वैशाख के वसंत ऋतु में बलराम जी वृंदावन आए और 2 महीना वृंदावन रहे, और 2 महीना जब वृंदावन में रहे तो उन्होंने सबसे मुलाकात की, माता पिता से मिले, यशोदा नंद महाराज से मिले, बड़ी गोपियों से बड़े गोपाओं से मिले, सबका आशीर्वाद लिया, दोस्तों को गले मिले, उनसे हंसी मजाक किया, नदी किनारे खेलने गए और गोपियों को भी मिले, और गोपियों ने बहुत कृष्ण भगवान की याद की उनके सामने बैठकर। भगवान ने, बलराम जी ने उनको सांत्वना दी और गोपियों को लेकर वो, ऐसा शास्त्र में लिखा है कि कृष्ण भगवान की गोपियाँ और बलराम जी की गोपियाँ अलग अलग थी, तो बलराम जी की जो गोपियाँ थी उनको लेकर बलराम जी वन में चले गए। और भागवत में वर्णन आता है कि 2 महीने की हर रात को उन्होंने अपनी गोपियों के साथ में रास रचाया। तो ऐसे ही एक बार बलराम जी अपने गोपियों को लेकर वन में बैठे हुए थे और उनके संग का आनंद ले रहे थे, प्रेम की वार्ता हो रही थी। उस समय अचानक ये द्विविध वानर जो है वहां पर आया। अभी वो भक्त नहीं भगवान का, अभी उसकी मति बिगड़ चुकी है। हाँ, कहने का तात्पर्य क्या है, अगर हम अभी भक्त बन चुके हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम जीवन भर भक्त रहेंगे। आपको निश्चय होगा तो ही रहेंगे, अगर गलत संग किया तो भक्त के अभक्त बन जाएंगे, नास्तिक बन जाएंगे, हम लोग अपराधी बन जाएंगे। इसलिए हर समय भक्ति को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। अगर हम ध्यान नहीं देंगे, उसको दुर्लक्ष कर देंगे, हाँ निग्लेक्ट कर देंगे उसको, तो हमें माया का संग मिलेगा, नास्तिकों का संग मिलेगा, अभक्तों का संग मिलेगा और भक्त के हम अभक्त बन जाएंगे। तो अभी ये द्विविध जो है वो पागल बन के वहां पर आया है। हाँ, और देखता है अरे इतनी सुंदर सुंदर गोपियां बलराम जी के साथ बैठी हुई हैं, तो उसको अच्छा लगता नहीं, मत्सर उत्पन्न होता है कि ये सब सुंदर गोपियां मेरी होनी चाहिए, ये कौन पुरुष बैठा है बीच में, वही बलराम जी है, वो लक्ष्मण जी का अपराध किया था ना, वही है वो, तो जाके उनका सब गोपियों को छीन लेता है, वहां से उठा लेता है, उनको भगा ले जाता है। सब गोपियां पहले तो उनका, उनको कुछ कुछ कीला कीला बोल रहा है, कुछ आवाज कर रहा है, उनका ध्यान अपने ओर खींचने का कोशिश कर रहा है, फिर कपड़े उतार कर दिखा रहा है उनको, या कुछ और कुछ मजाक कर रहा है, तो उनको लगा कि बंदर है अपना खेल रहा है। तब तक सब लोग हंसी कर रहे थे, हंसी मजाक में सब काम हो रहा था, बलराम जी भी देख रहे थे, गोपियां भी देख रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन अचानक वो बीच में आया सबके और जोर जोर से आवाज करके उसने गोपियों को उठाकर वो भागने लगा। फिर गोपियां डर गए और चिल्लाने लगी, बलराम जी बचाओ, बलराम जी बचाओ। तब बलराम जी ने कहा अभी बहुत हो गया, अभी हंसी मजाक का समय खत्म हो गया है। तो वो गए और उनका घनघोर युद्ध हुआ, सब वन में जो इतने पहाड़ थे, जितने पेड़ थे, वो सब खत्म हो गए, उठा उठा कर फेंक लिया उन्होंने, पत्थर का चूर चूर कर दिया पूरा पहाड़ का, सभी पेड़ जितने थे, वृक्ष थे बड़े बड़े, वो भी चूर चूर हो गए और पूरा लंबा मैदान तैयार हो गया, सब खत्म हो गया। फिर उन्होंने मल्ल युद्ध किया और फिर बलराम जी ने द्विविध वानर को मार डाला। देखो एक युग में भगवान रामचंद्र के अवतार में रामचंद्र की भक्त बन के सेवा कर रहे हैं और दूसरे युग में लक्ष्मण जी के हाथ, मतलब बलराम जी के हाथ में उसका वध हो रहा है। एक ही इसका तात्पर्य है कि भगवान कृष्ण को मानेंगे बलराम जी को नहीं मानेंगे, भगवान राम को मानेंगे लक्ष्मण को नहीं मानेंगे, तो गड़बड़ है, हमारे भक्ति का नाश हो जाएगा। क्योंकि भगवान राम की और भगवान कृष्ण की जो भक्ति हमको प्राप्त होनी है वो लक्ष्मण और बलराम जी के माध्यम से ही प्राप्त होनी है। जब तक उनकी कृपा नहीं है तो राम की कृपा नहीं हो सकती, कृष्ण की कृपा नहीं हो सकती। तो ऐसे ही बलराम जी जब ही महाभारत का युद्ध होने लगा, हाँ आप जानते हैं बलराम जी ने दुर्योधन के ऊपर कृपा की थी। हाँ, दुर्योधन को, बलराम जी गदा युद्ध में बड़े कुशल हैं, सबसे श्रेष्ठ गदा योद्धा जो है वो बलराम जी हैं। तो दुर्योधन को पता था कि मेरा जो नंबर वन का शत्रु है वो भीम है और वो गदा में एक्सपर्ट है, मुझे अगर भीम को मारना है तो गदा में मुझे एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। तो इसका जो नुस्खा है, इसका जो रहस्य है गदा युद्ध का, वो बलराम जी के पास है। तो बलराम जी को बड़ा प्रसन्न करता है वो सेवा करके उनकी, बलराम जी प्रसन्न हो जाते हैं और बोलते मांगो क्या चाहिए तुमको। तो दुर्योधन बोलता है मुझे आप गदा सिखाओ। तो ठीक है कोई बात नहीं, उधर ही रहते हैं उनके दरबार में, उधर उनके महल में, और कई महीने तक उनको गदा सिखाते हैं। तो दुर्योधन उनका प्रिय शिष्य बनता है क्योंकि दुर्योधन गदा युद्ध में बड़ा कुशल बन जाता है, यहां तक कि भीमसेन से भी अधिक कुशल बन जाता है वो। भीमसेन बल में बहुत श्रेष्ठ थे, बल बहुत था उनके हाथ में, लेकिन जो कुशलता थी ना, स्किल, वो कुशलता में दुर्योधन कुशल बने, बहुत भीमसेन से भी अधिक बने। तो जब महाभारत का युद्ध होने लगा तो किसका पक्ष लेंगे, दुर्योधन का लेंगे कि भीमसेन का लेंगे कि पांडवों का लेंगे? मेरे भाई जो हैं छोटे भाई कृष्ण वो पांडवों के पक्ष में है, मेरा शिष्य जो है वो कौरवों के पक्ष में है। तो वो बहुत कोशिश करते हैं कि युद्ध ना हो, लेकिन दुर्योधन एकदम युद्ध के लिए ही अटल था कि युद्ध करना ही करना है, पांडवों को खत्म करना है। तो वो देखते हैं कि ना मैं पांडवों का पक्ष ले पाऊंगा ना मैं कौरवों का पक्ष ले पाऊंगा, इसलिए वो तीर्थ यात्रा का बहाना करके चले जाते हैं कि मुझे इस युद्ध में नहीं पड़ना है। और भगवान कृष्ण की यही इच्छा थी कि अगर वो रहेंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, कि वो किसके पक्ष में युद्ध करेंगे, कभी दुर्योधन को फेवर करेंगे कभी पांडवों को फेवर करेंगे, तो युद्ध का निकाल कैसे लगेगा। हाँ, अगर अधर्म को धर्म से, धर्म से धर्म के लिए अधर्म को बचाना नष्ट करना है, धर्म को बचाना है तो कुछ ना कुछ पक्ष लेना पड़ेगा ना, या तो यहां पर या तो वहां पर, दोनों में कैसे रह सकते आप? तो फिर युद्ध का निर्णय लगेगा, हुआ होगा नहीं। इसलिए उनकी भी इच्छा थी मन ही मन की बलराम भैया जो है वो चले जाए तो अच्छा है, और वो भी समझते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है इसकी वजह से, इसलिए वो तीर्थ यात्रा का बहाना बन के चले जाते हैं। और जब जंगल में जाते हैं तो वो नैमिषारण्य में पहुंचते हैं। नैमिषारण्य में मैंने आपको लास्ट ईयर कथा बताई थी, वहां पर एक व्यास देव के शिष्य हैं रोमहर्षण सुत, वो बैठकर हजारों साधुओं को संतों को कथा कर रहे हैं। हाँ, और सभी साधुओं ने और संतों ने अपना सारा आयु जो है उसको दे दिया ताकि वो हजारों साल तक जीवित रहे और जो कथा यज्ञ जो है वो चलता रहे और जीवन के लिए कल्याणकारी कार्य कथा के रूप में सभी जनताओं के लिए उत्पन्न हो जाए, प्राप्त हो जाए, इसलिए वो सब लोग साधु वहाँ बैठे हैं और ये व्यासासन पे बैठे हैं और कथा कर रहे हैं। बलराम जी वहाँ प्रवेश करते हैं, बलराम जी स्वयं भगवान है और व्यास देव के शिष्य होने के नाते रोमहर्षण को पता है कि बलराम भगवान है, तो उनको उनके जगह पर खड़े होना चाहिए, उठकर कथा को बीच में विराम देकर खड़े होना चाहिए, लेकिन वो अपनी जगह बैठे रहते हैं। बाकी संत लोग खड़े हो जाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको भेंट देते हैं, उनका क्षेम कुशल पूछते हैं, उनकी पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं, लेकिन ये अपने आसन में बैठे रहते हैं। तो बलराम जी समझते हैं कि ये व्यक्ति जो है व्यासासन में बैठा हुआ है, ये जो कहेगा लोग सुनेंगे, ये जो भी उदाहरण स्थापन करेगा उसका और लोग अनुकरण करेंगे, क्योंकि ये व्यासासन में बैठा है, इसका पोजिशन बहुत पावरफुल है, ये जो भी कहेगा वो लोग फॉलो करेंगे और जो भी उसका उदाहरण होगा वैसा ही लोग करेंगे। तो इसने गलत उदाहरण स्थापित किया है कि भगवान के आने पर भी ये व्यक्ति खड़ा नहीं हो रहा है सम्मान देने के लिए। तो एक तृण का पत्ता जो है घास का उठाते हैं और गले पे लगाते हैं और उसका वध कर देते हैं। कितना बल है उनके अंदर, हाँ, एक घास का पत्ता गले को लगाते हैं और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। सब ब्राह्मण जो है संत लोग जो है आक्रोश करते हैं, अरे हमने हमारी सारी आयु उसको दी थी और आपने उसका वध कर दिया, जन कल्याण कैसे होगा? आप स्वयं भगवान हैं, आप सब जानते हैं, आपका कार्य भी गलत नहीं हो सकता क्योंकि आप भगवान हैं, आप कोई गलत कार्य नहीं कर सकते, लेकिन अभी क्या करें, इसका समस्या का समाधान कैसे करें? जिस व्यक्ति को हमने सारी आयु दी थी उसका आपने वध कर दिया, अभी हम चाहते नहीं कि आपका भी जो कृत्य है उसको मारने का उसको रिवर्स किया जाए, वो भी हमारी इच्छा नहीं, क्योंकि आप भगवान हैं। बलराम जी कहते हैं आपको चाहिए तो मैं उसको जीवित कर दूंगा, नहीं आप भगवान हैं, आपका जो कार्य है वो दिव्य है, उसका हम आदर रखना चाहते हैं, तो आप ऐसा उपाय बताइए कि ये कार्य जो हमने शुरू किया है कथा का वो भी संपन्न हो जाए और आपका जो वध करने का कार्य है वही वैसा बना रहे। तो बलराम जी भगवान हैं, वो क्या करते हैं कि उसका जो पुत्र है रोमहर्षण सुत का पुत्र जो है उग्रश्रवाश्रुत, उसको सारा जो वरदान है संतों का आयुष्य के रूप में वो उस पर ट्रांसफर कर देते हैं और अपनी शक्ति जो है वो उग्रश्रवाश्रुत के अंदर स्थापित कर देते हैं और कहते हैं कि पिताजी अपने पुत्र के रूप में जीता है आगे, तो आपका सारा वरदान मैंने जो रोमहर्षण सुत को दिया था वो मैंने उसके पुत्र के शरीर में स्थापित कर दिया है, अभी अपने पुत्र के रूप में रोमहर्षण सुत जो है वो आपको कथा करेंगे, यानी कि रोमहर्षण सुत जो है मृत होकर भी जीवित रहेगा अपने पुत्र के रूप में और यही कार्य जारी रखेगा। फिर भी बलराम जी इतना सब करने के बाद में भी संतों को पूछते हैं, संत बहुत खुश हो जाते हैं बलराम जी का ये दिव्य बुद्धि को देखकर, बड़े खुश हो जाते हैं। फिर भी प्रसन्न करने के बाद भी बलराम जी उनको पूछते हैं कि और आप कुछ वरदान मांगिए, मैंने आपके व्यासपीठ पर बैठे हुए ब्राह्मण का वध किया है, इसलिए आप मुझे और कुछ मांगिए, मैं आपको क्या कहते हैं पश्चाताप के रूप में मानिए या उस शाप के रूप में मानिए, आप कुछ मांगिए। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर एक राक्षस है बलवल नाम का, वो इलवल राक्षस का पुत्र है और वो अमावस्या और पूनम के दिन हमारे जगह पर आता है और हमारे यज्ञ स्थली को मलिन कर देता है, आकाश से खून और पीप और मूत्र और विष्ठा स्टूल सब का वर्षाव करता है, बहुत भयंकर दुर्गंधी और बहुत भयंकर अपवित्रता उत्पन्न करता है, हमारे यज्ञ स्थली को अपवित्र करके सब हमारा कार्य को नष्ट कर देता है, तो उसका आप वध कर दीजिए। तो बलराम जी ठीक है कोई बात नहीं, और उसको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब पहुंचते हैं जहां पर संत लोग रहते हैं वहां पहुंच जाते हैं, तो ऐसे ही अमावस्या के दिन बहुत भयंकर बदबू आने लगती है, बहुत तूफान सा आ जाता है, हवा बहुत जोर से कहती, सारी गंदगी हवा गंदी गंध को लेकर आती है हवा, मतलब बहुत गंदगी का बू उत्पन्न होता है बदबू। और कुछ ही देर बाद में आकाश से एकदम भयंकर हमारा जो संडास और मूत्र जो है उसका वर्षा होने लगता है, एकदम भयंकर अवस्था होती है एकदम। आप सोच सकते हैं ना अगर आकाश से भी पानी गिर रहा है इतना अच्छा लग रहा है, लोग भीग रहे हैं आराम से, हाँ वाटर स्पोर्ट में जा रहे हैं आनंद ले रहे हैं, और इसी के जगह अगर मूत्र और खून और पसीना का वर्षा हो जाएगी तो कैसे होगा, हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, इतनी बदबू इतनी गंदगी सब जगह पे। और कुछ ही देर के बाद में वो आकाश में प्रकट हो जाता है राक्षस, उसका वर्णन ऐसे किया गया वो एकदम पहाड़ के समान भयंकर था, वो ना अकराल विकराल स्वरूप था उसका, विराट स्वरूप था एकदम, आकाश में छा गया था वो, एकदम काले रंग का होता ना जिसको कहते हैं कार्बन, मतलब कोयला होता ना कोयला, ऐसा उसका भयंकर रंग था, और उस कोयले जैसे रंग के शरीर के अंदर बाल दाढ़ी और मूंछ लाल रंग की थी तांबे की तरह, ऐसा भयंकर राक्षस जो है त्रिशूल लेकर लाल लाल आंखें लेकर आकाश में प्रकट हो गया। तो बलराम जी ने तुरंत ही अपने हल को और अपने गदा को आह्वान किया, वो दो उनके शस्त्र हैं, हल मतलब नांगर बोलते हैं ना मराठी में जो खेती करते हैं उसको, तो वो उनका आयुध है शस्त्र है उनका, वो हमारे हृदय की मशागत करते हैं अपने हल से और अपनी हृदय को हमारे हृदय को कि हृदय की जमीन जो है उसको भक्ति का जो क्या कहते हैं फसल भक्ति का पीक, ये भक्ति का फसल निकालने के लिए हमारे हृदय की भूमि को वो अनुकूल बनाते थे, इसलिए उनका आयुध जो है वो हल है। और दूसरा आयुध है गदा, तो केवल राक्षसों के लिए है एक शस्त्र भक्तों के लिए है एक शस्त्र राक्षसों के लिए है, दोनों को आह्वान करते हैं और दोनों तुरंत उनके हाथ में प्रकट हो जाते हैं, और वह आकाश में मंडराता है राक्षस, जोर जोर से गर्जना कर रहा है, भयंकर वर्षाव कर रहा है आकाश से, तो अपने हल से बाएं हाथ से उनको कंधे पर लगाते हैं उठाकर उसको आकाश तक, और नीचे खींचते हैं उसको, और नीचे खींचने के बाद में दूसरे हाथ में गदा है और सर पे मारते हैं अवरणात्मिका और प्रक्षेपिका दो प्रकार के माया के भी शक्तियां हैं। माया क्या करती है, हमको पहले आवरण कर देती है, हम भूल जाते हैं हम कौन है, और फिर दंडा लगा देती है अपना, फिर हमको नीचे गिरा देती है। अगर हमको खुले में खुले नीचे ले, हम लोग नहीं हम नीचे क्यों जा रहे हैं, नीचे क्यों जा रहे हैं, पहले कवर करते हैं, सुनो आपको चादर डाल दिया आपके ऊपर, फिर आपको कहाँ ले जा रहा है आपको पता नहीं चल रहा है, तो माया पहले हमको भ्रम में डाल देती है और फिर हम पर प्रहार करती है। तो बलराम जी वैसे उसको पहले नीचे खींच के लेके आते हैं और सामने आने के बाद में उस पर सर पर प्रहार कर देते हैं, उसी क्षण में जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, और सब लोग संत लोग खुश हो जाते हैं, सब लोग खुशियाँ मनाते हैं, बलराम जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, बलराम जी को सुंदर स्तुतियों से सुंदर वचनों से उनका गौरव करते हैं। और जैसे देवताओं का और दानवों का युद्ध होता है, तो दानवों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात जैसे देवता लोग मिलकर इंद्र की पूजा और अभिषेक करते हैं, सब संत लोग मिलकर जो है बलवल राक्षस के वध के बाद में भगवान बलराम जी का अभिषेक करते हैं, और भगवान जी को अभिषेक करने के पश्चात उनको श्रेष्ठ दर्जे का सिल्क का वस्त्र देते हैं, रेशमी वस्त्र देते हैं, अलंकार देते हैं, और उनको सजाते हैं, और एक ऐसी कमल पुष्प की माला देते हैं जो मंत्रों के द्वारा शक्तिशाली हो गई है और जो कभी मुरझने वाली नहीं है, ऐसी अनोखी कभी भी ना मुरझने वाली कमल की माला उनको पहनाते हैं। और फिर कहते हैं अभी आप तीर्थ यात्रा करने के लिए आगे बढ़िए। तो जब संत लोगों को भगवान पूछते हैं कि आप और कुछ मांगिए, संत लोग दो चीज़ बोलते हैं उनको, आप इस बलबल का राक्षस का वध कीजिए और दूसरा आगे अपनी जो तीर्थ यात्रा है उसको जारी रखिए, तब आप इस रोमहर्षण सूत के वध के जो दूषित लग हो गए हैं उससे आप मुक्त हो जाएंगे। भगवान दूषित कभी होते नहीं है, भगवान लीला करते हैं, लेकिन फिर भी सामान्य जन के लिए आदर्श खड़ा करने के लिए स्वयं अपना दिखाते हैं कि दोष प्राप्त हो गया है और दोष का निवारण करने के लिए व्रत भी करते हैं और कुछ और भी कार्य करते हैं, पश्चाताप भी कर लेते हैं। तो संतों का आदर जो है वो हर व्यक्ति को करना जरूरी है। संत लोग जो है भगवान से बढ़कर माने गए हैं, भगवान उनके दास होते हैं, भगवान उनकी सेवा करते हैं, उनके चरणों में रत रहते हैं भगवान हमेशा। तो भगवान यहाँ पर एक आदर्श उत्पन्न कर रहे हैं कि भगवान कोई अपराध नहीं करते, कोई पाप नहीं करते, दुनिया के लिए श्रेष्ठ आदर्श उत्पन्न करने के लिए कुछ कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने लौकिक रूप में ब्राह्मण का वध किया। इसलिए ब्राह्मण के ब्रह्म हत्या से मुक्त होने के लिए संतों का आदेश मानते हैं, उनसे उनके द्वारा इंक्वायरी करते हैं और फिर तीर्थयात्रा में चले जाते हैं। तीर्थयात्रा का तो बहाना है उनके लिए, लेकिन एक उदाहरण स्थापन कर रहे हैं कि हमारे जीवन में संतों की सेवा, वैष्णव सेवा, ब्राह्मण सेवा जो है वो बहुत जरूरी है और वो करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जब हम संतों को प्रसन्न करते हैं, संतों को प्रसाद देकर संतुष्ट कर देते हैं, तो उनको संतुष्ट होने से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं और वो हमारे सामने रहते हैं। भगवान हमारे सामने नहीं है अब तक, हम उतने योग्य नहीं है कि भगवान को हम समझ सकें और देख सकें, उनका दर्शन कर सकें। संत हमारे सामने हैं। जब वैष्णवों की हम सेवा करेंगे, जब वैष्णव प्रसन्न हो जाएंगे तो अपने आप भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए संतों का आदेश सिर आंखों पर धारण करके बलराम जी बलबल का वध करते हैं और आगे तीर्थयात्रा में निकल जाते हैं। अभी तीर्थयात्रा में वो कहाँ कहाँ गए उनका सुंदर वर्णन यहाँ पर दिया है भागवत में। सबसे पहले वो कौशिकी नदी में गए, वहाँ स्नान किया, सरयू नदी में गए, वहाँ पर स्नान किया। ये जो सरयू नदी जो है, सरयू नदी, ये राम भगवान के काल की है। ये त्रेता युग में राम भगवान इसके किनारे पे उन्होंने निवास किया था। ये चित्रकूट में है, जब वो उनको वनवास हुआ था तो सबसे पहले सरयू नदी के किनारे उन्होंने निवास किया था। वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हुई हैं भगवान रामचंद्र के वनवास की। फिर वो सरयू का मुख जहाँ पर था, उगम स्थान, वहाँ पर गए। उसके बाद वो प्रयाग गए, यहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती नदी का संगम है, वहाँ पर उन्होंने स्नान किया। वहाँ पर देवताओं को और अपने पितरों का उन्होंने पूजा किया वैदिक धर्म के अनुसार, अपने पिताजी के आज्ञा के अनुसार। उसके बाद वो पुला ऋषि के आश्रम में गए, गंदकी और गोमती नदी में उन्होंने स्नान किया। एक और नदी है विपाशा, उसमें स्नान किया। फिर एक बहुत पवित्र और बहुत ही प्रसिद्ध नदी है, बिहार में है वो, उसका नाम है शोण नदी, उसमें उन्होंने स्नान किया। उसके बाद वो गया क्षेत्र गए। गया क्षेत्र वो स्थान है जहाँ पर पितरों का श्राद्ध किया जाता है। तो वसुदेव के आदेश के अनुसार उन्होंने अपने सारे पितरों के लिए वहाँ पर तर्पण किया। हाँ, फिर गंगा जी जहाँ पर समुद्र को मिलती है उस जगह को कहते हैं गंगा सागर। हर जनवरी में माघ महीने में गंगा सागर का मेला होता है, जहाँ पर संत लोग एकत्र होकर गंगा जहाँ समुद्र को मिलती है उस स्थान को बड़ा पवित्र माना गया है। एक्चुअली जहाँ पर सभी नदियाँ समुद्र को मिलती है वो स्थानों को सभी जगह पवित्र माना गया है, लेकिन गंगा नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है, इसलिए गंगा का स्थान बहुत प्रसिद्ध है, गंगा सागर मेला कहते हैं उसको। वो गंगा सागर में बलराम जी गए, वहाँ पर उन्होंने स्नान किया। गंगा सागर में स्नान करने के पश्चात वो उस जगह पर गए जहाँ पर भगवान परशुराम, भगवान के और एक अवतार परशुराम जी हैं। वो त्रेता युग में, द्वापर युग में वहीं पर है वो, तो महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं वो। और ये भी भगवान स्वयं भगवान हैं, एक भगवान के परिपूर्ण लीला अवतार जो है वो दूसरे भगवान के अवतार को मिलते हैं महेंद्र पर्वत जाकर। और बलराम जी उनको, क्योंकि बलराम जी क्षत्रिय के रूप में वृंदावन में वैश्य के रूप में थे, गौ पालन कर रहे थे, द्वारका में क्षत्रिय बनकर राज्य कर रहे थे, और परशुराम जी ब्राह्मण बनकर आए थे। इसलिए बलराम जी जाकर उनको वंदन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका गौरव करते हैं और फिर उनका दर्शन लेकर दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। और गोदावरी, वेणा, पंपा नदी, भीमराठी नदी, हमारी जो भीमा नदी है उसका नाम संस्कृत में भीमराठी कहा गया है, भीमराठी, ये सबकी नदी में स्नान करते हैं। और कार्तिकीय जो देवताओं के सेनापति हैं, हाँ, भगवान शंकर के पुत्र हैं गणेश जी और कार्तिकीय, इस कार्तिकीय के मंदिर में उनका दर्शन करते हैं। फिर महाराष्ट्र में आते हैं। अब ये जगह कहाँ है मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा कहा गया है, भागवत में लिखा है कि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला था उस समय वो शैलपुर नाम का, उस जगह जाते हैं, वहां पर दर्शन करते हैं। फिर दक्षिण में जाते हैं और वहां पर तिरुपति वेंकटाचल, वेंकट भगवान जो है, तिरुपति भगवान, उनका दर्शन करते हैं। जिना कि तिरुपति में भगवान बलराम जाकर उन्होंने दर्शन किया हुआ है। फिर वहां पर शिवकांची और विष्णुकांची नाम के पवित्र स्थान है, वो दोनों स्थान का दर्शन करते हैं। फिर कावेरी नदी में स्नान करते हैं। उसके बाद में भगवान का जो सबसे बड़ा मंदिर है विष्णु का, श्रीरंगम, उस जगह पहुंच जाते हैं। और श्रीरंगम में भगवान शयन किए हुए हैं, शयन रूप में उनकी भव्य मूर्ति है जो श्री रामचंद्र भगवान ने विभीषण को दी थी। और विभीषण के साथ में वो अयोध्या से यहाँ तक चले आते हैं। अब भगवान कहते हैं कि अभी आप लंका जाओ और हम यहीं विश्राम करेंगे, और यहीं से मैं लंका की ओर मेरी कृपा दृष्टि अर्पण करते रहूँगा और लंका का देखभाल करते रहूँगा। तो विभीषण आगे चले जाते हैं और भगवान वहीं विश्राम करते हैं, भगवान की विश्राम स्थली है। तो वहाँ पर बलराम जी पहुँचते हैं और रंगनाथ भगवान का दर्शन करते हैं। फिर दक्षिण की मथुरा, जिसका नाम है मदुराई, मदुराई मतलब दक्षिण में, दक्षिण की मथुरा, वो वहाँ जगह पहुँचते हैं। वहाँ से जब, जहाँ पर भगवान ने सेतु बंध आरंभ किया था, वहाँ से लंका तक उस जगह पहुँचते हैं। और वहाँ पर पहुँचकर वैदिक शास्त्र के नियम के अनुसार 10,000 गाय दान करते हैं ब्राह्मणों को। वहाँ से कृतमाला नाम्रपर्णी नदी में स्नान करते हैं। फिर जहाँ पर चंदन उत्पन्न होता है, मलय पर्वत, वो दक्षिण भारत में पहाड़ों में चंदन के झाड़ उगते हैं, सब जगह सुगंध रहता है वहाँ पर। ऐसे मलय पर्वत पर पहुँचते हैं और मलय पर्वत पर प्रसिद्ध ऋषि जो है अगस्त्य मुनि, उनका निवास है। उस अगस्त्य मुनि ने एक बार सारे समुद्र को पी लिया था, जैसे हम पानी पीते हैं, पूरे समुद्र को खाली कर देता हूँ, ऐसे एकदम श्रेष्ठ ऋषि थे वो। उनका दर्शन बलराम जी करते हैं, उनके चरण को छूते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते हैं दक्षिण की ओर, भारतवर्ष के कोने में पहुँचते हैं कन्याकुमारी, जहाँ पर दुर्गा देवी का मंदिर है। ऐसे कहा गया है कि इस मंदिर का दर्शन भगवान रामचंद्र ने भी किया था त्रेता युग में, जब वो सीता के खोज में वहाँ पर आए थे और उन्होंने ब्रिज बनाया था, उस समय उन्होंने दर्शन किया था इस नदी का, इस मंदिर का, दुर्गा देवी का। उसी मंदिर का दर्शन बलराम जी भी करते हैं। फिर वहाँ से उत्तर की ओर बढ़ते हैं और वहाँ पर एक सुंदर मंदिर है जिसको आज हम कहते हैं अनंत पद्मनाभ, वो केरल में है, लेकिन उसका शास्त्रीय नाम है फाल्गुन तीर्थ, जहाँ पर भगवान का जो अवतार है, मतलब स्वयं बलराम जी का जो अवतार है अनंत शेष, बलराम जी का एक स्वरूप है अनंत शेष, यानी कि नाग के रूप में वो भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का बिस्तर बनते हैं, भगवान उस पर विराजमान होते हैं, लेट जाते हैं, ऊपर फन खड़ा करते हैं, 1,000 फन होते हैं उनके, उससे भगवान को छत्र देते हैं, और उस फन के ऊपर सारे हमारे ब्रह्मांड जो है वो विराजमान है, अपने शीश के ऊपर धारण करते हैं। उसके मध्य में जो कौमुदी नाम का शीश है उनका, उसमें से वृंदावन धाम है, ऐसे उसका वर्णन आता है। कौमुद नाम का जो उनका फन है उसके ऊपर श्री वृंदावन धाम यहाँ का विराजमान है। तो वो अनंत जो रूप में भगवान विराजमान है फाल्गुन तीर्थ में, अनंत पद्मनाभ के रूप में, वहाँ पर वो दर्शन करते हैं। उसके आगे चले जाते हैं और पंचापसरस नाम के विष्णु मंदिर के स्थान पर पहुँचते हैं, वहाँ पर भी गायों का दान करते हैं। फिर शिव जी का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान हमारे गाँव में है, अभी वो दक्षिण से ऊपर आ रहे हैं, हाँ, गोकर्ण क्षेत्र स्थान है, वो शिव जी का स्थान है, वहाँ पर दर्शन करते हैं। फिर आर्या देवी मंदिर जो चारों तरफ से पानी से भरा हुआ है, उसका दर्शन करते हैं। फिर तापी नदी में स्नान करते हैं, पयोष्णी नदी में स्नान करते हैं, निर्विंध्य नदी में स्नान करते हैं जो विंध्याचल पर्वत के पास में है, और फिर दंडकारण्य में आते हैं। अभी आप कहेंगे दंडकारण्य यहाँ कैसे आ गया? दंडकारण्य एक बहुत विशाल अरण्य है, जब भगवान रामचंद्र को वनवास में भेज दिया गया था तो वो अयोध्या के बाहर निकले, अयोध्या के बाहर निकलते ही दंडकारण्य का आरंभ होता है। चित्रकूट भी उसमें आता है, नासिक क्षेत्र भी उसमें आता है, महाराष्ट्र भी उसमें आता है, और दक्षिण भारत में केरला तक पहुंचता है वो। आज सब शहर बन गया है, सब रास्ते बन गए, आपको पता नहीं चल रहा है आज। उन उस काल में अयोध्या के बाहर से दक्षिण भारत के एंड तक दंडकारण्य हुआ करता था। तो उस दंडकारण्य में फिर प्रवेश करते हैं जहाँ पर रामचंद्र भगवान ने वनवास किया था। फिर महाराष्ट्र की सबसे बड़ी नदी जो है नर्मदा नदी, उसमें वो स्नान करते हैं। महिष्मतीपुरी नाम का पवित्र स्थान है, वहाँ पर दर्शन करते हैं। और फिर जहाँ पर उन्होंने वो परिक्रमा आरंभ किया था, कहाँ से आरंभ किया था? प्रभास क्षेत्र कोई पवित्र क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में आगे जाकर, इस घटना के आगे जाकर कृष्ण का जो वंश था यादव वंश, उसका नाश होता है पवित्र स्थान पर प्रभास क्षेत्र। उस क्षेत्र पे बलराम जी ने अपनी तीर्थ यात्रा आरंभ की थी और वो घूमकर पूरा उत्तर में जाकर फिर दक्षिण में आते हुए फिर उत्तर में यात्रा करते हुए पूरा सर्कल पूरा करते हैं और फिर प्रभास क्षेत्र में पहुँचते हैं। और वहाँ पर संतों को जब मिलते हैं तो संत लोग उनको बताते हैं कि आप जब भ्रमण कर रहे हैं तो महाभारत का युद्ध हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? ये सभी यात्रा जो है बलराम जी ने केवल 18 दिन के अंदर की, क्योंकि महाभारत का युद्ध जो है उसकी शुरुआत में वो निकले थे, शुरू होने के कुछ दिन पहले, यानी कि 18-20 दिन 22 दिन के अंदर ही सब इतनी पूरा यात्रा पूर्ण किया है, वो भी चल के। तो जब वो पहुंचे वहां पर प्रभास क्षेत्र में, तो उनको संतों ने बताया कि महाभारत का युद्ध जो है अभी खत्म हो गया, अभी लास्ट युद्ध चल रहा है, बहुत संत लोग बहुत उसमें योद्धा लोग मारे गए हैं। तो बलराम जी को बहुत प्रसन्नता हुई, राक्षसों का भार जो है वो कम हो गया युद्ध के माध्यम से। जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं और पाप करते हैं उनको भगवान युद्ध के द्वारा, अकाल के द्वारा, तूफान के द्वारा, आंधी के द्वारा खत्म कर देते हैं। ये भगवान का पृथ्वी का जो पाप का भार है वो नष्ट करने के अनेक प्रकार हैं। कभी भयंकर वर्षा करके बाढ़ लाते हैं, कभी बिना वर्षा के अकाल लाते हैं, कभी भूकंप होता है, कभी आंधी आती है, कभी तूफान आता है, कभी सुनामी आता है, कभी युद्ध होता है। राक्षस लोग अपने आप में युद्ध करते हैं और दोनों खत्म कर देते हैं। तो इस युद्ध के माध्यम से राक्षसों का वध हो जाता है, इसलिए बलराम जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और उनको सुनाई पड़ता है कि अभी आखिरी युद्ध हो रहा है, भीमसेन और दुर्योधन के बीच में गदा युद्ध हो रहा है। वो तुरंत वहां से निकलते हैं और कुरुक्षेत्र पहुंच जाते हैं इमरजेंसी में, क्योंकि वो चाहते हैं कम से कम अभी मेरे दो प्रिय शिष्य जो हैं, एक मेरा प्रिय शिष्य है और एक मेरा भक्त है भीमसेन, तो युद्ध नहीं होना चाहिए। तो कुरुक्षेत्र पहुंचते हैं और दिन में युद्ध होता है ना, रात में आराम करते हैं। बीच में जाके उनको समझाते हैं वो कि देखो भीम तुम भी बलशाली हो, ये देखो दुर्योधन तुम भी बहुत कुशल हो गदा युद्ध में, तो बल में तुम श्रेष्ठ हो, गदा युद्ध के कुशलता में तुम श्रेष्ठ हो, वो दोनों तुल्य बल हो, वो दोनों में से किसी का वध नहीं होने वाला है, युद्ध चलते रहने वाला है, किसी का लाभ नहीं होने वाला है, इसलिए आप युद्ध को बंद कर दो अभी आप। और ऐसे लिखा गया जब वो वहां पहुंचते हैं तो नकुल सहदेव उनका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं लेकिन उनसे बात नहीं करते हैं, क्योंकि उनके मन में एक प्रश्नचिन्ह उत्पन्न होता है, अरे अभी ये आ गए तो किसका पक्ष लेंगे, दुर्योधन का पक्ष लेंगे कि मेरे भाई का पक्ष लेंगे। इसलिए सब स्वागत करते हैं लेकिन कोई बात नहीं करते उनसे, बड़े अजीब बात है ना, इतने प्रिय उनके बलराम जी हैं, इतने अचानक पहुंच के आ गए हैं वहां पर, कोई बात नहीं कर रहे, क्योंकि उनका उनमें संदेह है क्या करेंगे ये, वो भी आश्चर्य हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जाके उन दोनों को मनाते हैं, दोनों तैयार नहीं है सुनने के लिए, उनके मन में इतना क्रोध है, उनको जो कुछ पास्ट में हो गया है भूतकाल में, किसने किसने क्या कहा था, इसने मेरी पत्नी का अपमान किया था, इसने ऐसा किया था, उसने मुझको विष पिलाकर मारने का प्रयास करा था, क्या क्या कठोर शब्द बोले थे, वो भयंकर सब उनको याद आ रहा है। इसलिए बलराम जी का अच्छा उपदेश उनके दिमाग में प्रवेश नहीं कर रहा है। इसलिए जब व्यक्ति क्रोध में होता है ना तो क्रोध में वो अच्छा उपदेश सुन नहीं पाता है। क्रोध ऐसी वस्तु है जो अच्छे उपदेश से हमको वंचित रखती है, इसलिए कि वो क्रोध करना बहुत भयंकर माना गया है। क्रोध करने से हमारी अच्छी मति जो है वो नष्ट हो जाती है, अच्छी बुद्धि बोलते हैं ना, सद सद विवेक बुद्धि, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या कल्याणकारी क्या विनाशकारी, ये समझने की जो बुद्धि होती है ना, वो बुद्धि क्रोध से नष्ट हो जाती है, और अगर रहती भी है तो कवर हो जाती है, वो उसका उपयोग नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों बहुत क्रोध में थे, इसलिए बलराम जैसे व्यक्ति का उपदेश भी सुन नहीं पाए, समझ नहीं पाए और युद्ध करते रहे। बलराम जी परेशान हो गए, निकल गए वहां से, फिर वापस द्वारका में गए वो, और वहां पर उनके वसुदेव जी देवकी ने उनका स्वागत किया। वहां से वापस वो नैमिषारण्य में गए जहां पहले जाकर उन्होंने रोमहर्षण सूत का वध किया था, वहां वापस पहुंचते हैं और आगे जाकर यहां पर बलराम जी जब तक थे तब तक कृष्ण भगवान कुछ कर नहीं पाए, बहुत दिन तक उधर युद्ध हुआ, महाभारत के युद्ध होने के बाद की बात है, और कोई परास्त नहीं हो रहा था। भीम अपने 10,000 हाथी का बल से गदा प्रहार कर रहे थे उसके ऊपर, कोई बीच में आएगा तो उसका पूरा पाउडर हो जाएगा, लेकिन आप जानते हैं ना कि दुर्योधन तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि दुर्योधन की माता जो थी गांधारी बड़ी प्रतिव्रता थी, वो पतिव्रता थी, इतनी पतिव्रता थी कि पिता अपने पति अंधे हैं स्वयं की आंख में पट्टी बांध देती है वो, मेरे पति अगर अंधे तो मैं भी अंधे बन जाऊं। और उसी पतिव्रता का बल था इतना उसके अंदर कि वो उसने बहुत कोशिश किया अपने बालक को समझाने का कि तू गलत काम कर रहा है, तो पांडवों के खिलाफ इतना षड्यंत्र रचा रहा है जिसे तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी उसका पुत्र है ना वो, इतना गलत काम करने वाला है फिर भी माता का पुत्र पर प्रेम जो होता है ना वो निरामय होता है, मतलब शुद्ध प्रेम होता है उसका। आखिर जब मालूम पड़ता है कि भी युद्ध होने ही वाला है और इसके पाप इतने हैं कि इसका नाश निश्चित है, तो कम से कम मैं उसको भीम के गदा के प्रहार से बचाऊंगी, इसलिए वो कहते हैं कि जाओ नदी में स्नान करने करके जैसे मैंने आपको जन्म दिया था वैसे अवस्था में मेरे सामने आ जाओ, क्योंकि उसकी ये बड़ी दृढ़ योजना थी उसकी अपने बालक को मजबूत करने की। तो नदी में स्नान करता है और वो ऐसे ही जैसे जन्म हो गया वैसी अवस्था में आ रहा है चल के, और कृष्ण भगवान को पता है कि ये जो गांधारी है इतनी बड़ी शक्तिशाली माता है, तपस्विनी है ये, शिव भक्ति नहीं तपस्विनी है, और पतिव्रता का बल है उसके अंदर, ये उसको अभेद्य कर देगी मतलब अवध्य कर देगी वो पूरा, वो इसलिए वो बीच में जाते रस्ते में बोलते दुर्योधन को, अरे दुर्योधन ये क्या है, नहीं बड़े हो गए हो तुम कितनी उम्र हो गई तुम्हारी, अभी शर्म नहीं आ रही तुमको, अरे वो तपस्विनी माता है तुम्हारी, माता है तो क्या हुआ, उसने बोला तो क्या हुआ, उसके तपस्या का उसके व्रत का तो कम से कम आदर कर, कम से कम अपने गुप्त अंग को तो बंद कर। तो ये बराबर बता रहे मेरे ध्यान में कैसे नहीं आया, कृष्ण भगवान थैंक यू वेरी मच तुरंत झाड़ के पत्ते निकालते हैं और अपने गुप्त अंग को धक देते हैं और पहुंचते हैं, और माता पूछते आ गए पुत्र तू, आ गए माता, जैसे मैंने कहा वैसे किया तुमने, हाँ माता, नदी में स्नान किया, हाँ, जैसे मैंने आपको जन्म दिया था वैसे रूप में आए हो, हाँ माता, क्योंकि उनको कृष्ण ने बताया ना कि ये सही तरीका है माँ के सामने जाने का, क्योंकि तुम बालक नहीं हो, तब तुम बालक थे तो ठीक था नग्न अवस्था में, तो अभी अभी की अवस्था में यही तुम्हारे लिए अवस्था ठीक है, तो नहीं नहीं जैसे आपने कहा था वैसे आया हूं। तो फिर वो माता अपने आंखों की पट्टी खोल देती है, उसकी दृष्टि में इतनी शक्ति है इतना बल है कि जैसे ही वो ऊपर से वो देखना आरंभ करती है, जहां जहां उसकी नजर गिरती है दृष्टि पड़ती है वो पूरा वज्र का बन जाता है। वज्र का मतलब क्या होता है कि वज्र का शरीर बनने का मतलब है कोई शस्त्र तुम पर आघात नहीं कर सकता है, ना कोई अस्त्र ना शस्त्र ना कोई बाण ना कोई गदा, कुछ भी नहीं हो सकता है, दर्द भी नहीं होगा कुछ भी, शरीर पूरा अभेद्य हो जाएगा। तो जैसे ही ऊपर से देखती है सारा शरीर उसका वज्र का बन जाता है, और पूरा देखती है तो पांव तक अभेद्य हो जाता है वो वज्र का। लेकिन जब वो वापस पट्टी बांधती है तो बालक कहती है कि मूर्ख दुर्योधन कभी तो तुमने बड़ों का सुना होता, हाँ जीवन भर में नहीं सुना, अगर कम से कम आज सुन ले होते सुन लिया होता तो आज तुम कम से कम पूरे शरीर का वज्र के बन जाते, लेकिन जो भाग तुमने ढक दिया था वो कमजोरी रह गया, बाकी सब वज्र का बन गया। तो ये कृष्ण भगवान की अपने भक्तों को बचाने की नीति है, हाँ जो भगवान जिसको मारना चाहते हैं उसको कोई बचा नहीं सकता है, और जिसको वो बचाना चाहते हैं उसको भी मार नहीं सकता है, इसको वो मारना चाहते हैं कि ये पापी राक्षस है इसको मारना चाहिए, और बलराम जी खड़े हैं वहां पर तो कैसे अपना नुस्खा अपनाएं, तो वेट कर रहे हैं कब बलराम चले जाएंगे। जैसे ही बलराम जाते हैं तभी भी उनका युद्ध चालू रहता है, और गदा युद्ध में जो है कमर के नीचे कोई प्रहार नहीं करता है, तो दुर्योधन को मालूम है कि मैं तो हार ही सकता नहीं हूं, क्योंकि गदा युद्ध में कमर के नीचे मारने का अधिकार ही नहीं किसी को, नियम ही नहीं ऐसा, और नियम से जब तक लड़ रहा हूं तब तक मुझे ये भीमसेन 10,000 हाथी के बल से मुझे गदा मारते रहेगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, और जोर जोर से भीम मार रहा है और जोर जोर से दुर्योधन हंस रहा है, और दुर्योधन को क्यों हंस रहा है भीम को पता नहीं चल रहा है क्यों हंस रहा है, अरे इतना मैं 10,000 हाथी के बल से गदा मार रहा हूं और वो हंस रहा है बिल्कुल बिना दर्द के। तो बार बार कृष्ण की ओर मुड़के देखता है, और कृष्ण को देखता है तो कृष्ण बोला मारो और मारो, और थक जाता है वो, और जोर जोर से भीमसेन के सामने दुर्योधन हंस रहा है। तो फिर भगवान बहुत थक जाने के बाद भीम जो है असहाय होकर भगवान को देखता है, क्या करूं क्या अभी मैं, तो भगवान अपनी जंगा पर ऐसे हाथ मारते बोलते नहीं ऐसे कैसे, तो युधिष्ठिर बोलते नहीं नहीं गलत बात है ये, क्योंकि युधिष्ठिर धर्म के पालन करने वाले हैं, लेकिन भीम तो ऐसे काम करने में बहुत रेडी रहते हैं हाँ कभी भी एनी टाइम कोई रूल ब्रेक करना है तो भीमसेन को बोलो तुरंत तैयार है। युधिष्ठिर महाराज अर्जुन वहां पर मना कर रहे हैं, लेकिन भीमसेन जैसे भगवान उनको इशारा करते हैं तुरंत गदा लेकर उसको कमर के नीचे प्रहार करते हैं। और जैसे ही बलपूर्वक 10,000 हाथी का बल लेकर जब वो गदा प्रहार उसके कमर के नीचे करते हैं तो दुर्योधन आकाश में उड़ता है पूरा। इतना मतलब जब तक ऊपर प्रहार हो रहा है तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जहां पर कमजोर हिस्से में उसने मार दिया तो पूरा शरीर जो है दुर्योधन का बलशाली शरीर जो है आकाश में उड़ता है। वो चित्कार करते हुए आकाश में उड़ता है और जमीन पे गिर जाता है। उसकी जंगा जो है वो छिन्न विच्छिन्न हो जाती है, पूरा कमर जो है पूरे टूट टूट कर पूरा मांस और खून एकलव हो जाता है और इतनी भयंकर वेदना में वो तड़पते रहता है। तो वैसे कई जगह और जगह पर वर्णन किया महाभारत में, ये सुनकर बलराम दादा बहुत गुस्सा हो जाते हैं और जहां पर भी रहे वहां से गदा लेके प्रकट हो जाते हैं और भीमसेन को मारने जाते हैं, इसने गलत तरीके से मेरे शिष्य को मारा है, कम से कम नियम से युद्ध किया होता। फिर भीम का मृत्यु निश्चित है अभी, अगर बलराम दादा गदा लेकर उसके पीछे पड़े हैं तो भीम का 10,000 हाथी तो क्या हुआ, हाँ हजारों हाथी का बल भीम बलराम जी के हाथ में, तो भीमसेन का तो मृत्यु निश्चित है। भीमसेन भगवान कृष्ण का भक्त है, थोड़े भगवान कृष्ण को मरने देंगे उसको। तुरंत अपने भाई को मिलते हैं, दादाजी भैया जी ऐसा ऐसा है, इस व्यक्ति ने इनकी पत्नी का अपमान किया था, इसका वस्त्र हरण किया था, विष खिलाया था उनको, उनको वनवास भेजा था, उनको क्या छल कपट किया था, कितना उन्होंने अत्याचार किया है पांडवों पर, और बिना छल के मरता नहीं था, और अगर ये जीवित रहता तो पूरे विश्व में अधर्म फैल जाता, तो क्या चाहते हैं आप, हम लोग दोनों ने अवतार क्यों लिया है, धर्म को स्थापन करने के लिए, अधर्म को नष्ट करने के लिए, इसलिए दादा आप 10 क्रोध छोड़ दीजिए, जो होना था वो सही हुआ है, अधर्म का नाश हुआ है और ये 5 पांडव जो है इन्होंने नियम जरूर तोड़ा है लेकिन धर्म को स्थापन करने के लिए नियम को तोड़ा है, स्वार्थ के लिए नहीं तोड़ा है। तब ये सब प्रवचन सुनने के बाद में बलराम जी शांत हो जाते हैं और फिर भीम को गले लगा देते। पहले दुर्योधन को पत्ते निकालकर अपने शरीर को बंद करने के लिए मजबूर करके भीमसेन को बचाया, फिर बाद में बलराम के क्रोध से भी बचाया। ऐसे अर्जुन को युधिष्ठिर महाराज को हर समय भगवान ने बचाया है। तो बलराम जी भी शांत हो गए, उन्होंने भीम को आशीर्वाद दिया, सब पांडवों को आशीर्वाद दिया। इस तरह से बलराम जी की अनंत लीलाओं में से कुछ कथा पुष्प आपने हमारे हमने आपके लिए प्रस्तुत किए। बलराम जी बहुत ही क्या कहते हैं उसको, अद्भुत प्रकार के अवतार है भगवान के। उनको कहते हैं अवधूत, अवधूत का मतलब क्या होता है कि वो किस समय क्या करेंगे, किस पर कृपा करेंगे भरोसा नहीं है। जैसे दुर्योधन इतना पापी था फिर भी उस पर कृपा किया, उसको गदा युद्ध सिखाया, वैसे ही बलराम जी बड़े अद्भुत प्रकार के भगवान हैं, लेकिन जिस पर कृपा करते हैं उसका उद्धार हो जाता है। दुर्योधन का वध हो गया लेकिन भगवान के सामने हुआ, कृष्ण भगवान की आंखों के सामने हुआ, इसलिए उसको भी वैकुंठ प्राप्ति हुई। हाँ, भगवान आपको लगता होगा कि इसको बचाते हैं उसको मारते हैं, दोनों पर कृपा करते हैं, लेकिन कृपा का परिणाम अलग अलग होता है, एक को मुक्ति मिल जाती है और एक भगवान के साथ में चला जाता है, थोड़ा अंतर है उसके अंदर ना, एक को अपना बना लेते हैं, एक का उद्धार करते जाओ तुम्हारा मुक्ति हो गई तुम्हारी, और एक को मुक्ति करके अपना बना लेते हैं, इसमें अंतर है कि नहीं। जैसे किसी साहब ने ऑफिस में किसी को प्रमोशन दे दिया, पगार बढ़ा दिया उसको, और दूसरे व्यक्ति को अपने घर पे खाना खाने को बुलाया, उसमें अंतर है ना थोड़ा सा, उसमें जो रिलेशनशिप जो है वो अलग अलग है। इस तरह से कृष्ण भगवान और बलराम जी दोनों मिलकर द्वापर युग में आकर सबका उद्धार करने के लिए लीला करते हैं श्री वृंदावन धाम में और वृंदावन के बाहर। तभी हम 24 अगस्त को उनका जन्मदिन मनाएंगे, तब तक बलराम जी की कथा जो है वो जारी रखेंगे। अगली तारीख 10 तारीख है अगस्त की, तो उसकी अगली तारीख है 17 अगस्त, ये 2 मंगलवार को बलराम जी की लीला करेंगे, कथा करेंगे उसके बारे में। श्री बलराम भगवान की जय हो। थैंक यू वेरी मच।